अर्पा रेडियो की प्रस्तुति बर्फ के फूल ऑडियो कहानी संग्रह लेखिका जया जादवानी। आर्मेनिया की गुफा। जया जादवानी की ये कहानी सुनिए मीनू सिंह की आवाज में।
मुझे जब वहां पहुंचाया गया, सारे मौसम बीत चुके थे। उन सारे बीते मौसमों को अपनी देह पर झेला था मैंने बगैर शिकायत के। शिकायत का प्रश्न इसलिए भी बेमानी था कि किस से? देह उन सारे भारों से काफी लचक गई थी। चोटें दिखाई न देने के बावजूद अपनी मौजूदगी का पूरा पता देती थीं। वैसे भी अब उस देह को भी बार बार ठीक कराने का कोई वजनदार औचित्य तो नहीं था उनके पास, पर फिर भी उन्होंने एक और कोशिश की थी और मैं आखिर तक नहीं जान पाई थी कि ये किसी सामाजिक भय की देन था या कोई दया का भाव। यूं अब दोनों में कोई फर्क न कर सकने की तमीज अगर मुझमें थी भी तो किसी काम की नहीं थी। मेरे लिए दोनों ही बातें अर्थहीन थीं। वह मेरे बिस्तर के ठीक पीछे खड़ा था नीम अंधेरे में और मैं एक बिस्तर पर लेटी हुई थी। उजाले में वह अपनी सारी कोशिशें करके देख चुका था और लगभग उसी समय जबकि खुद उसे भी विश्वास हो रहा था कि वह भी औरों की तरह बस लौट जाने वाला है, मेरा मन एक विचित्र भाव से भर गया। कोई और आएगा और फिर वही सब बार बार। खेल खेल में मैंने उसे रोक लिया। मैंने खुद उसे बताया कि इस उजाले में वह कुछ नहीं पा सकेगा। कुछ पाने के लिए हमेशा कीचड़ में उतरना पड़ता है। कीचड़, दलदल, गंदे बहते नाले में उतरकर उस कीचड़ में घुटनों घुटनों डूबे रहकर अपने हाथों से वह गुमी हुई चीज टटोलनी पड़ती है। हालांकि इतनी ज्यादा उम्मीद करना उससे नाइंसाफी जैसा करना था। वह उम्र और अनुभव दोनों में मुझसे कच्चा था और मुझे लगा इसका हाथ पकड़कर कहाँ ले जाया जा सकता है, जहां ना इसके पहले कोई आया था न मैंने किसी को आने की जगह बनने दी थी। आप संस्कृत की किसी बेहद पुरानी किताब की तरह हैं, अनसुलझी, अलक्षित, अनसमझी, जटिल सूत्रों से भरी गूढ़ रहस्यों से लिपटी, वर्षों से एक ही जगह अटकी, वह कह रहा था। कुछ कहते कहते झिझक गया। मैं इंतजार करती रही। फिर उसकी दृढ़ आवाज आई, हो सकता है ये सूत्र मायना खेज हों, पर किस काम के? दुनिया इनके बगैर भी चल रही है आराम से। किसके पास इतनी फुर्सत और वक्त है? वह एकाएक चुप हो गया। जानती हूं मैं यह सच्चाई। इन फुर्सतों का इंतजार मैंने बरसों किया है। यह तो हमें बहुत बाद में पता चलता है कि चीजों की ही बहुत जगह होती है जीवन में, फीलिंग्स की नहीं। वे सड़ जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, कोई जानने की कोशिश तक नहीं करता। सारी कोशिशें तो बस चीजों को बचाए रखने की होती हैं। सो मुझे कुछ नहीं हुआ सुनकर मैं जमी रही। आप ठीक होना चाहती हैं? पीछे से आवाज आई। नहीं चाहती तो आती क्यों? आप नहीं आई हैं, ले आया गया है आपको। ऊपर से लगता है ये आप पर हंस रहे हैं, तरस खा रहे हैं, पर दरअसल आप हंसती हैं इन पर, आप थूकती हैं इन पर, आप इनसे उस सब का बदला लेना चाहती हैं जो उनके रहते हुआ नहीं और जाने उसकी जिम्मेदारी उनकी है भी या नहीं। हो भी सकती है, पर यह कोई तरीका नहीं बदला लेने का। समर्थ बनकर उनके किए को अनकिया करना या असमर्थ बनकर प्रतिशोध लेना दो निहायत अलग चीजें हैं। उनका कुछ हुआ या नहीं, पर आपका क्या हुआ? मैं बगैर एतराज के सुनती रही थी, पर आखिरी वाक्य सुनकर मुझे हंसी आ गई। हमारा क्या होता है डॉक्टर, इससे बढ़कर हार मान लो और सोचो कि कुछ नहीं हुआ। इस दुनिया में जो भी है वह सबका है, सबके लिए है। आपके पास नहीं तो इसकी जिम्मेदारी दूसरों पर क्यों? आप हाथ बढ़ाइए, ले लीजिए। तब दो बातें हो सकती थीं, अब तो सिर्फ एक है। मैं आपसे फिर वह प्रश्न पूछ रहा हूं, आप ठीक होना चाहती हैं? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। अभी मत दीजिए, कोई जल्दी नहीं, फिर कभी जब आपका जी चाहे। वह क्षण भर टिटका, फिर कहा, अब आप अपनी प्रॉब्लम कहिए। आज मैं वापस जाना चाहती हूं। कहाँ जाएंगी? वहीं जहां आप बार बार गई हैं और कुछ भी नहीं मिला आपको। हाँ, पर इस बार मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगी। शब्द बोझ होते हैं, वे छाती में बर्फ से जम जाते हैं। उनके नीचे फिर आहिस्ता आहिस्ता सब खत्म हो जाता है, और अगर उस सब को बचाना है तो इस जमी बर्फ को पिघलाना होगा, तब जाकर छाती में कोई झरना फूटेगा। ये सारे शब्द फिर उस वेग से बहते झरने में झर झर कर बह जाएंगे और फिर सब कुछ शांत हो जाएगा। उसने जो कहा मैं मान गई बगैर एतराज के। असल में मानना उस वक्त उतना तकलीफ देह नहीं होता जब आपके पास कोई विकल्प न हो। चुनने की सावधानी बहुत यातनाओं के बाद आती है, और यह सच भी है कि उससे बड़ी कोई यातना नहीं। आप यातना से बच सकते हैं, पर कितनी देर? वक्त अपनी पीठ दूसरी तरफ कर लेगा और आप नहीं जान पाएंगे कि जिस दलदल में आप गहरे धंसते जा रहे हैं वह दरअसल आपका अपना चुनाव है। पर अब जबकि मैं मान गई हूं कि मुझे उसकी सारी बातें सुननी हैं और वह सब कहना है जिसे किसी ने नहीं सुना आज तक, सबसे पहले अपनी तकलीफ आप मुझे बताएंगी? इसमें और दूसरों में यह फर्क है कि यह बहलाने की कोशिश नहीं करता। यह मुझे बीमार, लाचार और हारी हुई समझकर बात नहीं करता। यह इस तरह पेश आता है जैसे एक व्यक्ति दूसरे के साथ आता है, एक खास दूरी और खास समीपता के एकदम मध्य बिंदु पर अडोल। आपको बताया नहीं गया कितनी कितनी तरह से? मैं धीरे से हंसती हूं। मैंने आपसे कहा था ना, वह सब मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं। ओके, मैं पल भर सोचने को ठहरी कि उसने तुरंत कहा, सोचिए मत, सिर्फ कहिए। मुझे घूमते फिरते सोते जागते एक अजीब सी बदबू आती है, जाने कहां से, कुछ सड़ रहा है जैसे कोई लाश, नहीं कई लाशें और खूब पके फल। मैं रात को सोती हूं तो लगता है बाहर कोई दरवाजा खटखटा रहा है, जोर जोर से चिल्ला रहा है, आहटें बहुत सी और बहुत सारा शोर। लगता है बाहर नहीं निकली तो दरवाजा तोड़ दिया जाएगा और मुझे घसीट कर सड़कों के हवाले कर दिया जाएगा, और सड़कों से मुझे बहुत डर लगता है। मेरे माथे पर ठंडा पसीना झलक आया। इसके पहले कि मैं कुछ सोच पाती, एक हाथ ने मेरा पसीना पोंछ दिया। कई पल मुझे संभलने में लगे। सड़कें, डॉक्टर साहब, इन पर कितना भी भागो ये कहीं रुकती नहीं। हर सड़क के बाद एक नई सड़क, हर यात्रा के बाद एक नई यात्रा। अगर बाहर की आवाज अनसुनी कर क्षण भर को मैं अपने भीतर झांकती हूं तो वहां बहुत से हाथ मुझे इशारों से और फुसफुसा कर अपने पास बुलाते हैं। अंदर के नीम अंधेरों में वे परछाइयां बड़ी और डरावनी लगती हैं। डॉक्टर साहब, किसकी परछाइयां हैं ये? डॉक्टर साहब, जब कोई मर जाता है तो परछाई बन जाता है ना, छोटी बड़ी होती ये परछाइयां, जिस जमीन पर पड़ती हैं वही जमीन दलदली हो जाती है। पैर रखा नहीं कि फिसल कर जाने किस खोह में गिर जाने का डर। क्या ऐसी कोई जगह नहीं जहां मैं सीधी खड़ी हो सकूं? बहुत अजनबी तो नहीं लगता यह सब, या कि लगता है? नहीं, बहुत नहीं, अब तो डर भी पहचाना हुआ लगता है, मैं हंसने लगी। तुम्हें यकीन नहीं होगा डॉक्टर, जितना मैंने अपने डर को देखा है उतना कभी हमें तक नहीं देखा गया। हमें सचमुच का देखना हमेशा हमेशा स्थगित होता रहा और वही देखा जाता रहा जो देखना चाहा जाता रहा। यह जो हम आग की बातें लिखते हैं डॉक्टर साहब, अपना आप जलाकर क्या होता है इससे? दूसरे सिर्फ सेंकते हैं अपने आप को हमारी भट्टी में और सिंक कर बाहर आ जाते हैं हल्के गर्म कुरकुरे। यह जो हम आग की बातें लिखते हैं डॉक्टर साहब और सिंक कर बाहर आ जाते हैं हल्के गर्म कुरकुरे। हाँ, आपके घरवाले कह रहे थे कि आप जाने क्या लिखती हैं, उनकी समझ में नहीं आता। पीछे से फिर आवाज, आपको क्या लगता है मेरी समझ में आता है? मैं फिर हंस पड़ी। आपको नहीं लगता इस सब के पीछे वही भाव है कि आओ देखो मुझे, जानो मुझे? अपने अनुभव और अंधेरों से ज्यादा क्या लिखा जा सकता है? इतने क्रूर मत बनो, चाहे यही सच है पर क्या इसे फिर कभी नहीं कहा जा सकता था? मेरी आवाज मुझे सूखे पत्ते सी खाली लगी, भारहीन। क्यों बचना चाहती हैं सच्चाई से? अब तो कोई वजह भी नहीं। आपको सबसे ज्यादा नफरत किससे है? अपने आप से? और प्यार? किसी से भी नहीं। झूठ बोलती हैं आप। फिर आप क्यों बचाना चाहती हैं अपने आप को? मैं नहीं बचाना चाहती खुद को, फिर लिखती क्यों है? शट अप, जस्ट शट अप। आपको क्या पता लिखना क्या है? अपने आप को नंगा करना है कि देखो क्या हूं मैं। यहां उंगली रखो और यहां और यहां और यहां भी, आवेश से मैं हांफने लगी। वह मेरे निकट नहीं आया, शायद दूर खड़ा था। वे कह रहे थे आपको अपने जिस्म से बहुत प्यार है, आप बार बार धोती हैं इसे, दिन दिन भर इसी के पीछे पड़ी रहती हैं, सजाना संवारना फिर धोना। पीछे से फिर उसकी आवाज आई, एक ही चीज थी बचाने को मेरे पास, मैं बचा लेना चाहती थी। बड़ी पवित्र होती थी, मेरी निगाह में गंदी हो गई। कहाँ है मेरी? देखो ना कितने सारे नाम लिखे हैं इसके ऊपर, क्या तुम पढ़ सकते हो डॉक्टर? मेरे जिस्म पर जिसने पहली बार नाम लिखा था वह मेरा बाप था। इस तरह पहली बार उसने मुझे मेरी पहचान से वंचित कर दिया, फिर जब उसने किसी और को दे दिया तो उसने पूरा नाम मिटाकर नया नाम लिख दिया। अब मैं किसी दूसरे की संपत्ति थी, फिर जब मैं उससे अलग हुई तो तीसरे ने पास बुलाकर अपना नाम लिख दिया। मैं जिद और गुस्से से भर गई, मेरा जिस्म तो साइन बोर्ड बनता जा रहा है। मैंने वह सारे नाम मिटा देने की ठानी। असहनीय उत्तेजना से मेरी देह कांपने लगी। मेरा जिस्म तो साइन बोर्ड बनता जा रहा है, मैंने वह सारे नाम मिटा देने की ठानी। असहनीय उत्तेजना से मेरी देह कांपने लगी, पर वह तो मेरे लहू और सांस में इस तरह खोद दिए गए हैं कि अब उन्हें चाकू की नोक से ही काट काट कर निकाला जा सकता है। और जरा देखिए मेरे जख्म, कहते हुए मैंने अपना कुर्ता ऊपर कर दिया। जगह जगह चाकू से खोदे गए निशान, पुराने काले निशान, नए लाल निशान, निशानों के नीचे अधमरे कीड़ों से बिलबिलाती नंगी पीड़ा। कहते हुए मैंने अपना कुर्ता ऊपर कर दिया। जगह जगह चाकू से खोदे गए निशान, पुराने काले निशान, नए लाल निशान, निशानों के नीचे अधमरे कीड़ों सी बिलबिलाती नंगी पीड़ा। एक ही जिस्म पर कितने सारे नाम। अरे डॉक्टर, ये तो चाकू से भी नहीं निकलते। जितना भी इन्हें खुरचती हूँ लगता है गहरे धंसते जा रहे हैं। देखो देखो कितना गहरा है, चाकू हड्डियों से टकरा रहा है। ठक ठक, डॉक्टर मांस तो नहीं पर क्या हड्डियां मेरी हैं? मेरी आवाज टूटकर बिखरने लगी। उसने आकर मेरा कुर्ता नीचे कर दिया और एक सफेद चादर से मेरी देह ढांक दी। कोई नहीं ढांकता। फिर तुम क्यों ढंक रहे हो? आओ देखो मुझे, कितने दिन बचोगे तुम अपनी भूख से? एक और नाम नहीं लिखोगे तुम? उठाओ मुझे, बाजार में टांग दो, रौंद डालो सड़कों पर, और मैं अपने जिस्म से तंग हूं, मुझे छुटकारा चाहिए तुमसे, सबसे। कहाँ जाऊं मैं? बोलो कहाँ जाऊं मैं? बोलो मैं कहाँ जाऊं? अरे कोई है, कोई है, मुझे बाहर निकालो, मेरा दम घुटता है यहां। कितना काला पानी है, तुमने देखा? जाने किस आवेश में कांपती मैं उठी और चादर खींच कर परे फेंक दी और रोते रोते चिल्लाने लगी। उसने मेरा जिस्म पकड़कर झिझोड़ दिया। शायद वह नर्स थी जो भीतर से आई और मेरी बांह में कुछ घोंप दिया। आपको एक बात याद है? उसने झिड़कते हुए पूछा। कई दिनों बाद, वैसे पिछले दिनों हुआ सिर्फ यह था कि मेरी खराब हालत को देखते फिर कई दिन मुझे डॉक्टर के विशेष चैम्बर में ही रखा गया था। जख्म खुल गए थे और रिश्ते रहे थे। वह बड़ी सावधानी से उन पर मलहम लगाता, पट्टी करता। जहां के जख्म ऊपर से सूखे दिखते वहां भी मवाद भरा रहता। दबा दबा कर वह बाहर निकालता तो मुझे बड़ी राहत मिलती। वे सब परिवार के लोग सुबह भी आते, शाम भी। जब भी आते मैं सोने का प्रयत्न करती या चुपचाप खाली छत को ताकती रहती। उनके और मेरे बीच संवाद के सारे पुल टूट गए थे और हम सब पहचाने खंडरों के मलबे पर खड़े एक दूसरे को अजनबी आंखों से देखा करते। वे आपस में आंखों के इशारों में बातें करते या फुसफुसाकर। उनकी देह अपने खास कोड में उनकी बातें मुझ तक पहुंचाती और मैं पाती मवाद जितना निकलता है उतना ही फिर भरने लगता है। डॉक्टर समझ गए और फिर उन्होंने उन सब का आना बेहद कम करा दिया। वह मेरी उस खास मनह स्थिति में होने का इंतजार कर रहा था जब वह मुझे फिर अपने सवालों के कटघरे में खड़ा करता और अब मैं उसके सवालों के घेरे में थी। क्या? मैंने उसकी ओर देखना चाहा पर वह दिखा नहीं। जब आपको यहां लाया गया था तब आप यह चिल्ला रही थी कि खोदो मुझे, खोदो मुझे, खाली कर दो। तो आप और क्या कर रहे हो? तुम इस खुदाई में क्या क्या मिलेगा तुम्हें? बताओगे मुझे? बताओगे ना? कोई हीरा मिला अगर या चांदी का, कोई बहुत पुराना सिक्का काला हो गया होगा, पर दिखाना जरूर मुझे। किसने रखा होगा मेरे अंदर? अब तो याद भी नहीं रहा, पर मैं उसे एक बार देखना चाहती हूं। बल्कि मेरे अंदर तो मेरी बहुत सी चीजें गिर गई हैं, मेरा वक्त गिर गया है। अंदर मैं खुद हूं कहां? ये जो दिख रहा है ना तुम्हें, सूखी यातना का ढेर, खोदोगे इसे? है हिम्मत? डॉक्टर तुम मेरा वक्त लौटा दोगे ना? और फिर मैं रो पड़ी। उसने उस दिन और कुछ नहीं पूछा। आपका चैम्बर डॉक्टर साहब मुझे आर्मीनिया की गुफा सरीखा लगता है। बहुत से लोग आते हैं यहां, जो कहीं नहीं कहा जा सका वह यहां आकर कहते हैं। तुम उसे पढ़ते पढ़ते ऊब नहीं जाते? मैंने अगले दिन कहा तो वह मुस्कुरा पड़ा। आप अपने बिस्तर पर लेट जाइए, आप मुझे अपने सामने बिठाकर क्यों नहीं पूछते? आपने ही कहा था आप मेरे सामने नहीं बोल सकती। दूसरे लेटा हुआ व्यक्ति खुद को ज्यादा आसानी से खोल सकता है, मैं बिस्तर पर जाकर लेट जाती हूँ। वह उठकर मेरे सिर के ऊपर का उजाला कम कर देता है और मेरे सिरहाने पीछे आ खड़ा होता है। ये आर्मीनिया की गुफा क्या है? पूछा उसने। जब हम लोग पूरी तरह हमलावरों के कब्जे में होते हैं और जुबान बंदी का नियम लागू हो जाता है साल हो साल, तो वह सब कहने के लिए हमें आर्मीनिया की गुफा सरीखी जगहों की जरूरत होती है, जैसे मुझे है इस वक्त। फिर भी मैं नहीं समझा। मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। तुम्हारी दीवारें वे सारे अक्षर सोख लेती होंगी, फिर जब सब चले जाते होंगे तुम भी, तब वे सारे अक्षर दीवारों से उतरकर सड़कों पर चलने लगते होंगे। उनमें अद्भुत जीजीविषा होती है डॉक्टर। वे स्थान बदलते हैं व्यक्ति, पर मरते नहीं। उन्हें दबाया कुचला मसला जा सकता है, पर उन्हें मारा नहीं जा सकता। सड़क पर भी न जाने कितने बूटों टायरों के बीच वह पिसते रहते हैं। उन्हें कोई बुहार कर सड़क के किनारे भी फेंक देता होगा। बहुत देर वे वहीं कुचले मसले पड़े रहते होंगे, फिर धीरे से उठकर वापस लोगों के सीनों में समा जाते होंगे। आप बहुत अजीब बातें करती हैं। इनका असर सीनों से सड़कों तक ही रहता है ना? बस कभी कभी कुछ शब्द अंतरिक्ष में पहुंच जाते हैं और वहां से उजाले के कतरों की तरह उतरते हैं, पर ऐसी घटनाएं कम होती हैं, हजारों बरसों में एक बार। हमने तो सुनी है सिर्फ। उसकी तरफ से कोई आवाज नहीं आई तो मैंने उसकी दिशा में देखा। अब भी नहीं समझे? नहीं, उसने कहा तो मैं हंस पड़ी। उस दिन हम बर्फ की बात कर रहे थे ना, कि सारी इच्छाएं सारे सपने मन की गहन अंधेरी गुफाओं में दफन हो जाते हैं। बरसों बाद कुछ सड़ गल भी जाते हैं, उनकी बदबू बाहर आने लगती है और कुछ बिल्कुल यूं ही रखे रह जाते हैं, बिल्कुल नए नवेले कोरे से, जिन्हें सहेज कर रखते रखते फिर एक वक्त के बाद दूसरी पीढ़ी को दे दिया जाता है किसी मूल्यवान वस्तु की तरह, जैसे मेरी माँ ने मुझे दिया था। कहा था, बोलना मत, चुप रहना और सहना। सारी शुरुआत यहीं से तो होती है। एनीवे, आपको अपने बचपन की याद है कुछ? सुनोगे तुम? हाँ जरूर। देखो, कोई और सुन लेता तो मुझे तुमसे न कहना पड़ता। आर्मीनिया की गुफा। मैं फिर हंसने लगी। पहले कच्ची थी तो बड़ी सौंधी सी गंध आती थी। तुमने कभी सूंघी कच्ची अमियासी वह गंध? जी? वह हड़बड़ा गया। नहीं नहीं, मत बताओ। समझदार मर्द अपने रहस्य औरतों को नहीं बताया करते। क्या कच्ची थी? उसने फिर पूछा। वे ही फल जो मेरे अंदर लगे थे और उनकी महक से मैं बौराई घूमती थी। बड़ी मीठी सौंधी सी वह गंध उन फलों की। मैं झट से पेड़ पर चढ़ जाती और वे कच्ची अमिया से फल कुतर कुतर कर खाती दिन दिन भर। फल इतने ज्यादा थे कि पेड़ की शाखें झुक झुक जाती उस भार से और खाने वाली अकेली मैं। फल इतने ज्यादा थे कि पेड़ की शाखें झुक झुक जाती उस भार से और खाने वाली अकेली। सो मैंने उसे हिलाना शुरू कर दिया। भर भर के कच्चे फल टप टप नीचे गिरते और मैं सबको बांटती जाती। जो आता मैं हंसती, भर भर उसे देती। फिर मैं रुकी तो उधर से आवाज आई, लोगों को और ज्यादा चाहिए था डॉक्टर। वे जिद करने लगे कि हम खुद तोड़ के ले जाएंगे। मैंने मना किया तो वे पत्थर मारने लगे। मैंने भी अपना दरवाजा उनके मुंह पर बंद कर दिया और सोच लिया कि सारे फल सड़ जाएं चाहे, पर मैं उनको दूंगी नहीं। बाहर से लाठियों पत्थरों की आवाजें, पटापट पटापट। मैं फल खाना भूलकर डर से कांपती हर वक्त दरवाजा टूटने का इंतजार करती रही। हाँ हाँ कहती जाइए। फल बड़े होकर पकने लगे। मेरी देह से नहीं संभलता था वह वजन। अंदर की महक बाहर फूटने लगी। मुझे डर लगने लगा कि किसी के भी पास से गुजरूंगी तो वह झट ये महक सूंघ लेगा और टूट पड़ेगा मुझ पर। और तुम्हारे पिता, वह तो खूब वाकिफ था ना डॉक्टर साहब, सो उसने अपना नाम लिख दिया मुझ पर। और फिर लाठी ठका ठक कर घोषणा कर दी कि मैं उसकी मिल्कियत थी और जो कोई मुझ तक पहुंचना चाहता है उसे उसकी शर्त पूरी करनी होगी। शर्तों के बारे में कुछ बताएंगी?
शर्तें तो डॉक्टर साहब बड़ी मामूली होती हैं ना, धनुष तोड़ने से लेकर जुल्म और जिद में जीते जाने की शर्तें, जो हर वो पुरुष पूरा कर सकता है अहो भाग्य समझकर, जिसके बाजुओं में ताकत हो। फिर यह ताकत भी बड़ी अजीब चीज है, बाहर रहे तो जुल्म बन जाती है, अंदर रहे तो जिद, हार न मानने की यह जिद। मेरी ही जिद थी जिसे उनकी लाठियों के भरपूर वारों ने तोड़ दिया था। आप उन्हें पहचान लेंगी?
मैंने उन्हें पहचान लिया है डॉक्टर। सहसा मैं उठकर बैठ गई और उसे अपने पीछे से खींचकर सामने खड़ा कर लिया। तुम तो नहीं हो ना उनमें से? उसने तेजी से खुद को मेरे हाथों से छुड़ाया। हाँ मैंने उन्हें पहचान लिया है। अब मैं उनके खिलाफ गवाही दूंगी। मेरी आवाज टूटकर बिखर गई। वे अजब से धूल और धुंध से भरे दिन थे, जब समय की शाख से गुजरे हुए दिन सूखे पत्तों की तरह पैरों के नीचे पड़ते और चरमराकर चीखने लगते। सोचती हूं जिसे हम बीता हुआ समझते हैं क्या सचमुच बीता हुआ होता है? उस धुंध में जबकि कोई भी चीज मेरे सामने स्पष्ट नहीं थी और पानी में पड़ती परछाइयों सी सारी चीजें पल पल कांपती और मैं बेबस किसी को भी पकड़ने में असमर्थ खोजती, सिर्फ खोजती। और फिर मुझे एक चेहरा दिखने लगा था, पहले धुंधला फिर आहिस्ता आहिस्ता स्पष्ट। सब कुछ था जो मेरे हटाए नहीं हट रहा था। उस चेहरे की उपस्थिति में फिर सारी चीजें अपना स्पष्ट आकार लेने लगी और फिर राफ्ता राफ्ता मुझे सब कुछ दिखने और समझने लगा था। जाना कि धुंध जो भ्रम देती है, धूप आहिस्ता से उसे छीन लेती है। सारी तस्वीर मेरे सामने साफ हो गई थी, पर मैंने आगे बढ़कर किसी को छूने की कोशिश नहीं की। कोई चाह नहीं थी मेरे अंदर, मैंने उन्हें वैसे ही रहने दिया। आज सोचती हूं क्या कुछ भी नए सिरे से शुरू किया जा सकता है? पाप और पुण्य, सारे किए अनकिए, सारी स्मृतियों की गठरी बांध हम कहीं छोड़ आए और समय की नदी में नहा वापस सब कुछ दोबारा शुरू करें? क्या सब कुछ दोबारा शुरू किया जा सकता है दोबारा, जबकि हम हैं वहीं के वहीं? वही सब कुछ हमारे पास फिर से है और हम वही एक खेल खेलना जानते हैं। क्या हम ऐसे खिलाड़ी नहीं जिसे जब जब ताश के पत्ते दिए गए उसने एक ही तरह से खेल खेला है और एक ही तरह से हारा है? मुझे नहीं मालूम कि समय का कोई अंतिम सिरा होता है या नहीं जहां से दोबारा मुड़ा जा सके, परंतु हमारा एक सिरा अवश्य ऐसा होता है जहां से मुड़ते हैं हम और वापस पहुंचते हैं वहीं। क्यों बुलाता है मुझे वह चेहरा बार बार, हर बार रात के सन्नाटे में और चौंक चौंक कर उठती हूं। हालांकि अब कोई दरवाजा नहीं खटखटाता, मेरे बहुत निकट आकर मुझे आवाज देता है कान के एकदम पास, सांस की एकदम करीब, हल्की नर्म नर्म सी आवाज।
मैं अब वहां नहीं जाती, मेरा उपचार बंद हो चुका। सिर्फ कभी कभी जब मैं किसी काम से घर से बाहर निकलती, उस गली से होती हुई जाती उस क्लिनिक की तरफ जहां मेरा उपचार हुआ करता था, और बकौल डॉक्टर जिसे मैं आर्मीनिया की गुफा कहती थी। सोचती हूं तो हंसी आती है। हम सबसे ज्यादा ठीक तब होते हैं जब हम पागल होते हैं। आप सच के जितना निकट जाएंगे होश खोते जाएंगे। इतनी सामर्थ्य नहीं होती किसी की छाती में कि इतना सच जी सके। जिनकी छातियों में होती है उनकी छातियां भेद दी जाती हैं। शायद इसीलिए जब भी हम सच के निकट होते हैं पीछे वाले हमें वापस खींच लेते हैं। वह एक उचाट और सूनी दोपहर थी जब मैंने तय किया और घर से निकल पड़ी। अधिक से अधिक क्या होगा, मैं लौट आऊंगी। इतने हैं, एक और सही। जिस समय पर मैं पहुंची मैं जानती थी बंद होगा। सिर्फ नर्स अपने केबिन में बैठी कोई पत्रिका पढ़ रही थी। सामान्य औपचारिकता के बाद मैंने अंदर जाने की इजाजत मांगी, उसने साफ इनकार कर दिया। इस वक्त वो किसी से भी नहीं मिलते चाहे कितना भी जरूरी हो। बहस बेकार लगी। कहा, कोई बात नहीं, मैं फिर आ जाऊंगी। मैं उठी और बाहर आ गई। बाहर आकर गाड़ी स्टार्ट की, कुछ दूर गई, कार मोड़कर गली में दूर खड़ी की, फिर वहां से पैदल आई। आज मैं लौट कर जाने के लिए तो आई ही नहीं थी, आज तो फैसला ही होना था, हाँ या नहीं। नर्स के केबिन पर पर्दा झूल रहा था। मैं पीछे से आई और दबे पांव तेज चलती उसी केबिन में घुस गई जिसमें मैं इंतजार किया करती थी। कोई नहीं था, नीम अंधेरा, एसी चलने की हल्की सी आवाज। मैंने अंदर से सिटकनी लगा दी। अब नर्स की पहुंच से बहुत दूर थी मैं, आगे बढ़ी ही थी दबे पांव की एक आवाज ने पैरों को बांध लिया। मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हूं। रोज मेरे किए की सफाई मत मांगो। कौन हो तुम, मेरे पीछे क्यों पड़े हो? सुनो, फिर भी सुनो, शायद तुम्हारे पास हो कोई रास्ता जो मुझे निकाल सके। सुनो सुनो, क्या मैं बहुत दूर आ गया हूं? क्या यहां से लौटा नहीं जा सकता? सुनो, वह कौन सी चीज है जो मेरे किए का भी पीछा करती है, अनकिए का भी? कितनी बार जगह बदल कर देख चुका, इसकी चमकती आंखों से मुझे पल भर भी छुटकारा नहीं। कहती कुछ नहीं, पर कितनी यातना देती हैं ये आंखें। इतने सारे लोग कहते हैं मुझसे, मैं किससे कहूं, तुम्ही से तो। वह कहती थी ना, मेरा चैम्बर आर्मीनिया की गुफा है। चैम्बर नहीं, मैं हूं आर्मीनिया की गुफा। गुफा किससे कहे, बोलो, मैं किससे कहूं, तुमसे? समझोगे तुम? नहीं समझोगे। मैं समझता हूं क्या? नहीं समझता। दर्द अपनी दवा खुद खोजता है। मेरा दर्द क्या खोज रहा है, दवा या? एक कड़वी हंसी के साथ खामोशी। मैंने आवाज पहचान ली, वही थी पर बिखरी बिखरी सी, कुछ भी पहले जैसा नहीं था। आवाज खोखली, मुर्दा देह निःसत्व घिसटती हुई। मैं नहीं बनना चाहता था आतताई, पर पता नहीं मुझे किसने, मुझे इतिहास की कब्र के सबसे ऊंचे चबूतरे पर खड़ा कर दिया और मेरे हाथ में ये छड़ी दे दी, और मैं हांकने लगा भीड़ को। विजेता बनने का सुख बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा। नहीं, ताकत नहीं थी मुझ में। मुझे तो सिर्फ दो ही चीजें चाहिए थी, एक पतंग और एक गुड़िया। ताकत तो सिर्फ धर्म के पास थी। उसने अपनी लाठी मुझे दे दी और जिबह हो रहे बकरे का ताजा खून पिला दिया, गर्म और नशीला। देखो, मेरे ओठ अभी तक लाल हैं। सिर्फ एक घूंट और हम कितनी ही दूर चलने को राजी हो जाते हैं। हम एक घूंट पीते और जूठे बकरे दूसरों के हवाले कर देते, फिर और हांफने की लगातार आवाज मैं दम साधे खड़ी रही। मैं सच नहीं बनना चाहता था आतताई, मुझसे सब छूट गया और फिर भी मैं दौड़ रहा था। फिर उसके जोर से हंसने की आवाज, मैं उसी तरह खड़ी रही। फिर काफी देर आवाज नहीं आई। सो तो नहीं गया थक कर, मैंने सोचा, दरवाजा खोलकर देखूं। जैसे ही हाथ बढ़ाया फिर आवाज आई, उसे, हां उसे छोड़ दिया मैंने, पागल औरत थी। वह कैसी नजरों से देखती थी वह मुझे। उसे लगता होगा मैं अलग हूं उन सब से, जिनकी बावत वो मुझे बताया करती थी। बेवकूफ औरतें, उन्हें क्या पता, उन्माद, आनंद, मजा सब उन्हीं से है। कोई किसी से अलग नहीं होता, हम सब एक हैं। हा, हंसने की आवाज। हैंडल पर हाथ जमाए मैं चुप खड़ी थी। सोचा था ना, बहुत सोचा था, हजारों बार। मैं इस सब से गुजरा हूं, जो भी मेरे पास आती फिर खाली हाथ नहीं जाती। पर क्या था ऐसा उसमें, कोई ऐसी चीज कि मेरा कुछ और बनने का जी करने लगा। क्यों करने लगा? अब क्या है मेरे पास अंदर, और मैं क्या बचाना चाहता हूं? क्या कुछ बाकी है अभी भी? मैं उसे खत्म कर दूंगा, किसी को अपने रास्ते में नहीं आने दूंगा, किसी को भी नहीं। हट जाओ, हटो, तुम इस तरह मत देखो मुझे। मैं इन आंखों से भागता आया हूं इतने दिनों। ए, मेरे निकट मत आना, तुम्हारी महक मुझे पागल कर देगी और मैं मजबूर हो जाऊंगा। दूर रहो तुम मेरे अंदर के हिंसक जानवर से, इसकी चाल में मत आना। कभी यह खरगोश की तरह गोद में आ बैठता है और कभी शेर की तरह सीधे मुंह में रख लेता है। नहीं, कहां सुनाई देती है उसके आने की आवाज? मुझे तो आज तक सुनाई नहीं दी, जबकि मेरे ही साथ सोता जागता है वह। अरे जाओ, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? चली गई, फिर आएगी बार बार। क्यों आएगी, मुझे बदलने? हंसते हंसते वह आवाज रुदन में बदल गई। मैंने दरवाजा अब भी नहीं खोला, सिर्फ रुदन सुनती रही, जो जाने कहां से आ रहा था, एकदम ठंडा रुदन। फिर धीरे धीरे रुदन भी शांत हो गया। मैंने दरवाजे को अपनी तरफ खींचा तो वह खुल गया बे आवाज। मैंने जरा सी दरार में झांका, वही कमरा, वही बिस्तर, वही मध्यम सी रोशनी। इस बार वह खुद था, उसी बिस्तर पर लेटा। उसके सिर के ऊपर घड़ी लटक रही है और वह हवा में दूर कहीं देख रहा है। उसका पूरा चेहरा दिखा नहीं, चेहरे का एक हिस्सा उस रोशनी में, अजनबी हिस्सा था वह, जिससे मेरी जरा भी पहचान नहीं थी। वह भी छिपा था कहीं उसके अंदर और आज बाहर निकल आया था। मैंने आहिस्ता से दरवाजा बंद कर दिया और वापस लौटी। जैसे ही मैंने अपनी तरफ से सिटकनी खोल बाहर कदम रखा, उसे दरवाजे पर खड़ा देख स्तब्ध रह गई। फिर खुद को संभाला और दो कदम आगे बढ़कर उसके निकट आई। आई एम सॉरी, पर आज जरूरी था मिलना, मेरे अपने लिए, मैंने आंखें झुकाए हुए ही कहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने आंखें उठाकर उसे देखा, पत्थर सा भावहीन चेहरा, क्या हुआ? मैंने लगभग उसके निकट आकर फुसफुसा कर पूछा। वह हंस दी, मानो कह रही हो, क्या हो सकता है इसके सिवा जो हो रहा है। फिर उसकी हंसी गायब हो गई और उसकी आंखें खाली हो गईं। उसके चेहरे पर कुछ नहीं था। बिजली की तेजी से मेरे अंदर कुछ कौंधा। तुम यहां क्या कर रही हो? अपनी बारी की प्रतीक्षा? मैंने लगभग फुसफुसाकर उससे पूछा। उसने कुछ कहा नहीं। मेरी बगल से निकली, अंदर घुसी और दरवाजा बंद हो गया। क्या कुछ नहीं हो सकता? क्या बहुत देर हो चुकी है? मैं चुपचाप लौटने लगी।
आप सुन रहे हैं रेडियो अर्पण।